नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा ये यात्राएं दोनों देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने का शानदार अवसर। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत जीता। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, अगले 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी। और टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज और इटली के जैनिक सिनर विम्बल्डन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए। रूस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रा रूस और ऑस्ट्रिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने का शानदार अवसर होगा। इन देशों के साथ भारत की मित्रता समय की कसौटी पर खरी साबित हुई है। श्री मोदी ने कहा कि वो इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने को उत्सुक हैं। रूस में प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जबकि ऑस्ट्रिया की ये उनकी पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत रूस संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हैं।
22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर प्रमुख जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों देशों के बीच व्यापक संबंधों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित से जुड़े समसामयिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दोनों नेताओं के बीच चर्चा के दौरान रूसी सेना में सेवा देने के नाम पर गुमराह किए गए भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई का मुद्दा भी उठने की उम्मीद है। भूपेंद्र सिंह के साथ दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
झारखंड विधानसभा में आज हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के 45 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। एक रिपोर्ट।
इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर बहस हुई। मत विभाजन के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विश्वास मत के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 48 वर्षीय सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के एक सप्ताह के भीतर 4 जुलाई को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज दोपहर में मंत्रियों का शपथ समारोह आयोजित होने की संभावना है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। केके लाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
मध्य प्रदेश में आज राज्य मंत्रिमंडल के संक्षिप्त विस्तार में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिपरिषद में कुल 31 मंत्री हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। श्री रावत चंबल क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं और विजयपुर सीट से 6 बार विधायक चुने गए हैं। श्री रावत कुछ महीने पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी परीक्षा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें नीट 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और कदाचार के आरोप तथा नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ सबसे पहले उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें गड़बड़ी के आधार पर पूरी परीक्षा को चुनौती देते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्र की दलीलें सुनी जाएंगी। इससे पहले शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई परीक्षा से लाखों वास्तविक उम्मीदवार प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। विद्यार्थी उत्तर कुंजी पर कल तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित होने की संभावना है। यह परीक्षा पहली बार हाइब्रिड आधार पर आयोजित की गई थी। 15 विषयों के लिए परीक्षा पेन पेपर पर आधारित थी, जबकि अन्य 48 विषय कम्प्यूटर आधारित थे। इस वर्ष 261 केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आम प्रवेश परीक्षा के लिए 13,40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग करने वाली जनहित याचिका निपटारा भी किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय को इस पर एक नीति तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने कहा कि नीति से जुड़ा यह मुद्दा अदालतों के संज्ञान का मुद्दा नहीं है। महिलाओं को ऐसी छुट्टी देने पर अदालत का निर्णय प्रतिकूल और हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से बच सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि यह निर्देश राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश की नीति पर स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा नहीं करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने एक दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे। वो आज सुबह असम के कछार पहुंचे और बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। श्री गांधी मणिपुर के जिरीबाम जिले पहुंचे और जिले में शरण ले रहे हिंसा प्रभावित परिवारों से बातचीत की। बाद में श्री गांधी चुराचांदपुर के लिए रवाना हो गए। वहां वो राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो बिश्नुपुर जिले का दौरा करेंगे और राहत शिविरों के कैदियों से मिलेंगे। कांग्रेस नेता आज शाम इम्फाल रवाना होने से पहले मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात करेंगे। मुंबई के विभिन्न इलाकों में आज मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर में देर रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 घंटे की अवधि में विभिन्न स्थानों पर 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। मुंबई के संरक्षक मंत्री दीपक केसरकर ने राज्यों की विधानसभा में कहा कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। एक रिपोर्ट।
आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण मुंबई और उसके उपनगरों में निचले इलाकों में जलजमाव हो गया है। शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वडाला और मानखुर्द के बीच हार्बर लाइन पर ट्रेनों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई BEST बसों के मार्गों को बदला गया है। शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में पहले सत्र के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुंबई विश्वविद्यालय ने कुछ परीक्षाओं को स्थगित किया है। मुंबई महानगर पालिका से संबंधित अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और BMC के कर्मचारी सड़कों पर लोगों को मदद पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। उधर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तेज वर्षा के कारण जलभराव और घरों में पानी भरने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले में देर रात तेज बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में जलभराव हुआ, जिसके बाद कई प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों में ठहराया जा रहा है।
चंपावत जिले की पूर्णागिरी तहसील में 150 से अधिक परिवारों को राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस बल ने स्थानीय प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं उधम सिंह नगर जिले की खटीमा और सितारगंज तहसील में 25 से अधिक स्थानों में जल भराव हुआ है। NDRF के 98 सदस्यों सहित SDRF, पुलिस, जल पुलिस दल और तहसील प्रशासन मिलकर राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। NDRF ने गिल्हारी चकरपुर गांव में करीब 150 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उधर पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचे हुए भूस्खलन के कारण 100 से अधिक सड़क मार्गों पर यातायात अवरुद्ध है। सभी मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर सहित चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।
सभी जिलों के जिला अधिकारी थे। कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना, और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है। इसी तरह से लोगों को वहां पर जो है अभी फंस गए उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
इस बीच मौसम विभाग ने चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं कहीं तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्से में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमासेन रॉय ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, वहीं पूर्वी भारत में भी मूसलाधार बारिश जारी रहने की आशंका है।
20 सेंटीमीटर तक का बारिश होने की पॉसिबिलिटी है कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक। बाकी वेस्ट कोस्ट में आज एक्सट्रीमली के साथ ज्यादा बारिश रहेगी, वेरी हेवी केरला में भी रहेगी और साउथ इंडिया कर्नाटक में, और कल यहाँ भी बारिश कम हो जाए। उत्तराखंड में आज इसका बारिश कम होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। सेंट्रल इंडिया में आज भी वेस्ट मध्य प्रदेश में अति भारी वर्षा, ईस्ट इंडिया में भी बारिश जारी रहेगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जेनिक सिनर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अल्कराज ने फ्रांस की उगो हम्बर्ट को 4 सेटों में 6-3, 6-4, 1-6 और 7-5 से हराया, जबकि सिनर ने अमरीकी प्रतिद्वंद्वी वेन शेल्टर को 6-2, 6-4, 7-6 से पराजित किया। 7 बार के चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच आज रात 16वें राउंड में 15वीं वरीयता प्राप्त डेनिश होल्गर रून से मुकाबला करेंगे। वहीं चौथी वरीयता प्राप्त जर्मन अलेक्जेंडर ज्वेरेव अपने चौथे दौर में 13वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी टेलर फिट से मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व चैंपियन एलेना रैबिकोवा का मुकाबला 17वीं वरीयता प्राप्त अन्ना कलिंस्किया से होगा। पेरिस डायमंड लीग में केन्या के मध्यम दूरी के धावक फेथ केपेगॉन ने कल अपना ही 1500 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। केपेगॉन ने 3:49.04 में दौड़ को पूरा किया, जो पिछले वर्ष इटली के फ्लोरेंस में बने उनके विश्व रिकॉर्ड से 0.07 कम है। केपेगॉन पहले से ही ओलंपिक की 1500 मीटर प्रतिस्पर्धा में 2 बार चैंपियन रही हैं और उनके पास 3 विश्व खिताब हैं। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 थाईलैंड के ताक प्रांत में चल रहा है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रक्षा जनसंपर्क कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देशों की सैनिक टुकड़ियां कठोर प्रशिक्षण सत्रों में भाग ले रही हैं। इस दौरान उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 इस महीने की 15 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य भारत और थाईलैंड की सेना के बीच परिचालन तालमेल को और बढ़ाना है। यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और शांति को बढ़ावा देने में निकट सहयोग की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम की आज पहली तारीख है। यह महीना हिजरी वर्ष का पहला महीना है। कर्बला की घटना इसी महीने में हुई थी। मुहर्रम महीने में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस्लाम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने नए साल की शुरुआत पर मुस्लिम समुदाय को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हैं। श्री मोदी ने कहा ये यात्राएं दोनों देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने का शानदार अवसर। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत जीता। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, अगले 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।